स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई कुछ पुरानी, कुछ जानी कुछ अनजानी। आज सुनिए गुरदुलैन हैदर की लिखी कहानी फोटोग्राफर। मौसम बहार के फूलों से घिरा बेहद लुभावना गेस्ट हाउस हरे भरे टीले की चोटी पर दूर से नजर आ जाता है। टीले के ऐन नीचे पहाड़ी झील है। एक बल खाती सड़क झील के किनारे किनारे गेस्ट हाउस के फाटक तक पहुंचती है। फाटक के नजदीक वॉलरस जैसी मूछों वाला एक फोटोग्राफर अपना साजो सामान फैलाए एक टीन की कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहता है। ये गुमनाम पहाड़ी कस्बा टूरिस्ट इलाके में नहीं है, इस वजह से बहुत कम सियाह इस तरफ आते हैं। चुनाचे जब कोई सुहाग रात मनाने वाला जोड़ा या कोई मुसाफिर गेस्ट हाउस में आ पहुंचता है तो फोटोग्राफर बड़ी उम्मीद और सब्र के साथ अपना कैमरा संभाले बाग की सड़क पर टहलने लगता है। बाग के मालिक से उसका समझौता है। गेस्ट हाउस में ठहरी किसी नौजवान खातून के लिए सुबह सवेरे गुलदस्ता ले जाते वक्त माली फोटोग्राफर को इशारा कर देता है और जब सुहाग रात मनाने वाला जोड़ा नाश्ते के बाद नीचे बाग में आता है तो माली और फोटोग्राफर दोनों उनके इंतजार में चौकस मिलते हैं। फोटोग्राफर मुद्दतों से यहां मौजूद है, ना जाने और कहीं जाकर अपनी दुकान क्यों नहीं सजाता, लेकिन वो इसी कस्बे का बाशिंदा है, अपनी झील और अपनी पहाड़ी छोड़कर कहां जाए। इस फाटक की पुलिया पर बैठे बैठे उसने बदलती दुनिया के रंगारंग तमाशे देखे हैं। पहले यहां साहब लोग आते थे, बरतानवी प्लांटर्स, सफेद सोला हैट पहने कॉलोनियल सर्विस के जगादारी ओहदेदार, उनकी मेम लोग और बाबा लोग। रात रात भर शराबें उड़ाई जाती थीं और ग्रामोफोन चीखते थे और गेस्ट हाउस के निचले ड्रॉइंग रूम में लकड़ी के बने फर्श पर डांस होता था। दूसरी बड़ी लड़ाई के जमाने में अमरीकन आने लगे थे, फिर मुल्क को आज़ादी मिली और इक्का दुक्का सियाह आने शुरू हुए, या सरकारी अफसर, या नए ब्याहे जोड़े, या मुसव्विर या कलाकार जो तन्हाई चाहते हैं। ऐसे लोग जो बरसात की शामों को झील पर झुकी धनुष का नज़ारा करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो सुकून और मोहब्बत की तलाश में हैं जिसका ज़िंदगी में वजूद नहीं, क्योंकि हम जहां जाते हैं फना हमारे साथ है, हम जहां ठहरते हैं फना हमारे साथ है, फना मुसलसल हमारी हमसफर है। गेस्ट हाउस के मुसाफिरों की अवाक जवाक जारी है। फोटोग्राफर के कैमरे की आंख ये सब देखती है और खामोश रहती है। एक रोज शाम पड़े एक नौजवान और एक लड़की गेस्ट हाउस में आन उतरे। ये दोनों अंदाज से सुहाग रात मनाने वाले मालूम नहीं होते थे, लेकिन बेहद खुश और संजीदा से वो अपना सामान उठाए ऊपर चले गए। ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली पड़ी थी। सीने के बराबर में डाइनिंग हॉल था और उसके बाद तीन बड़े रूम्स। ये कमरा मैं लूंगा, नौजवान ने पहले बेडरूम में दाखिल होकर कहा, जिसका रुख झील की तरफ था। लड़की ने अपनी छतरी और ओवरकोट उस कमरे के एक पलंग पर फेंक दिया था। उठाओ अपना बोरिया बिस्तर, नौजवान ने उससे कहा। अच्छा, लड़की दोनों चीजें उठाकर बराबर के सिटिंग रूम से गुजरती दूसरे में चली गई, जिसके पीछे एक पुख्ता गलियारा सा था। कमरे के बड़े बड़े दरीचों में से वो मजदूर नजर आ रहे थे जो एक सीढ़ी उठाए पिछली दीवार की मरम्मत में मसरूफ थे। एक बैरा लड़की का सामान लेकर अंदर आया और दरीचों के पर्दे बराबर करके चला गया। लड़की सफर के कपड़े बदलकर सिटिंग रूम में आ गई। नौजवान आतिशदान के पास एक आराम कुर्सी पर बैठा कुछ लिख रहा था। उसने नजरें उठाकर लड़की को देखा। बाहर झील पर दफतन अंधेरा छा गया था। वो दरीचे में खड़ी होकर बाग के धुंधलके को देखने लगी, फिर वो भी एक कुर्सी पर बैठ गई। न जाने ये दोनों क्या बातें करते रहे। फोटोग्राफर जो अभी नीचे फाटक पर बैठा था, उसका कैमरा आंख रखता था लेकिन सुनने से लाचार था। कुछ देर बाद वो दोनों खाना खाने के कमरे में गए। और दरीचे से लगी हुई मेज पर बैठ गए। झील के दूसरे किनारे पर कस्बे की रोशनियां झिलमिला उठी थीं। उस वक्त तक एक यूरोपियन सयाह भी गेस्ट हाउस में आ चुका था। वो खामोश डाइनिंग हॉल के दूसरे कोने में चुपचाप बैठा खत लिख रहा था। चंद पिक्चर पोस्टकार्ड्स भी उसके सामने मेज पर रखे थे। ये अपने घर खत लिख रहा है कि मैं एक रहस्यमयी जगह के एक रहस्यमयी डाक बंगले में मौजूद हूं। सुर्ख साड़ी पहने एक रहस्यमयी हिंदुस्तानी लड़की मेरे सामने बैठी है। बड़ा ही रोमांटिक माहौल है, लड़की ने चुपके से कहा। उसका साथी हंस पड़ा। खाने के बाद वो दोनों फिर सिटिंग रूम में आ गए। नौजवान अब उसे कुछ पढ़कर सुना रहा था। रात गहरी होती गई। दफतन लड़की को जोर की छींक आई और उसने सूं सूं करते हुए कहा, अब सोना चाहिए। तुम अपनी जुखाम की दवा पीना ना भूलना, नौजवान ने फिक्र से कहा। हां शब्बा खैर, लड़की ने जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। पिछला गलियारा घुप अंधेरे में पड़ा था। कमरा बेहद पुरसकून, खुनक और आरामदेह था। जिंदगी बेहद पुरसकून और आरामदेह थी। लड़की ने कपड़े बदल कर सिंगार मेज की दराज खोली, दवा की शीशी निकाली कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने अपना काला किमोनो पहनकर दरवाजा खोला। नौजवान जरा खराया हुआ था, सामने खड़ा था। मुझे भी बड़ी सख्त खांसी उठ रही है, उसने कहा। अच्छा, लड़की ने दवा की शीशी और चमचा उसे दे दिया। चमचा नौजवान के हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। उसने झुककर चमचा उठाया और अपने कमरे की तरफ चला गया। लड़की रोशनी बुझाकर सो गई। सुबह को वो नाश्ते के लिए ड्राइंग रूम में गई। जीने के बराबर वाले हॉल में फूल महक रहे थे। तांबे के बड़े बड़े गुलदान ब्रासों से चमकाए जाने के बाद हॉल के झिलमिलाते चोबी फर्श पर एक कतार में रख दिए गए थे और ताज़ा फूलों के अंबार उनके नज़दीक रखे हुए थे। बाहर सूरज ने झील को रोशन कर दिया था और जर्द व सफ़ेद तितलियां हरियाली पर उड़ती फिर रही थीं। कुछ देर बाद नौजवान हंसता हुआ जीने पर नमूदार हुआ। उसके हाथ में गुलाब के फूलों का एक गुच्छा था। माली नीचे खड़ा है, उसने ये गुलदस्ता तुम्हारे लिए भिजवाया है, उसने कमरे में दाखिल होकर मुस्कुराते हुए कहा और गुलदस्ता मेज पर रख दिया। लड़की ने एक कली उठाकर बेख्याली से उसे अपने बालों में लगा लिया और अखबार पढ़ने में मसरूफ हो गई। एक फोटोग्राफर भी नीचे मंडरा रहा है। उसने मुझसे बड़ी संजीदगी से तुम्हारे मुतालिक दरियाफ्त किया कि तुम फलां फिल्मी स्टार तो नहीं, नौजवान ने कुर्सी पर बैठकर चाय बनाते हुए कहा। लड़की हंस पड़ी। वो एक नामवर डांसर थी, मगर इस जगह पर किसी ने उसका नाम भी न सुना था। नौजवान लड़की से भी ज्यादा मशहूर संगीतकार था, मगर उसे भी यहां कोई न पहचान सका था। इन दोनों को अपनी अस्थाई गुमनामी और मुकम्मल सुकून के ये मुख्तसर लम्हात बहुत भले मालूम हुए। कमरे के दूसरे कोने में नाश्ता करते हुए अकेले यूरोपियन ने आंखें उठाकर इन दोनों को देखा और जरा सा मुस्कुराया। वो भी इन दोनों की खामोश खुशी में शरीक हो चुका था। नाश्ते के बाद वो दोनों नीचे गए और बाग के किनारे गुलमोहर के नीचे खड़े होकर झील को देखने लगे। फोटोग्राफर अचानक छलावे की तरह सामने आ खड़ा हुआ। उसने बड़े ड्रामाई अंदाज में टोपी उतारी और सर झुकाकर कहा, फोटोग्राफ लेडी। लड़की ने घड़ी देखी। हम लोगों को अभी बाहर जाना है, देर हो जाएगी। लेडी, फोटोग्राफर ने पांव मुंडेर पर रखा और एक हाथ फैलाकर बाहर की दुनिया की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। बाहर कारजारे हयात, मतलब जिंदगी में घमासान का रन पड़ा है। मुझे मालूम है इस घमासान से निकलकर आप दोनों खुशी के चंद लम्हे चुराने की कोशिश में मसरूफ हैं। देखिए, इस झील के ऊपर धनुष पल की पल में गायब हो जाती है। लेकिन मैं आपका ज्यादा वक्त न लूंगा, इधर आइए। बड़ा बातूनी फोटोग्राफर है, लड़की ने चुपके से अपने साथी से कहा। माली जुगोया अब तक अपने क्यू का मुंतजर था, दूसरे दरख्त के पीछे से निकला और लपक कर एक और गुलदस्ता लड़की को पेश किया। लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो और उसका साथी अमर सुंदरी पार्वती की मूर्ति के करीब जा खड़े हुए। लड़की की आंखों में धूप आ रही थी, इसलिए उसने जरा मुस्कुराते हुए आंखें जरा सी चौंधिया दी थी। क्लिक क्लिक, तस्वीर उतर गई। तस्वीर आपको शाम को मिल जाएगी। थैंक यू लेडी। थैंक यू सर। फोटोग्राफर ने जरा सा झुककर दोबारा टोपी छुई। लड़की और उसका साथी कार की तरफ चले गए। सैर करके वो दोनों शाम पड़े लौटे। संध्या की नारंगी रोशनी में देर तक बाहर घास पर पड़ी कुर्सियों पर बैठे रहे। जब कोहरा गिरने लगा तो अंदर की निचली मंजिल के लंबे चौड़े और खामोश ड्राइंग रूम में नारंगी कुमकुमों की रोशनी में आ बैठे। न जाने क्या बातें कर रहे थे जो किसी तरह खत्म होने को ही नहीं आती थी। खाने के वक्त वो ऊपर चले गए। सुबह सवेरे वो वापस जा रहे थे और अपनी बातों में उनको फोटोग्राफर और उसकी खींची हुई तस्वीर याद भी ना रही। सुबह को लड़की अपने कमरे में ही थी जब बैरे ने अंदर आकर एक लिफाफा पेश किया। फोटोग्राफर साहब ये रात को दे गए थे, उसने कहा। अच्छा, सामने वाली दराज में रख दो, लड़की ने बेख्याली से कहा और बाल बनाने में जुटी रही। नाश्ते के बाद सामान बांधते हुए उसे वो दराज खोलना याद ना रही और जाते वक्त खाली कमरे पर एक सरसरी नजर डालकर वो तेज तेज चलती कार में बैठ गई। नौजवान ने कार स्टार्ट कर दी। कार फाटक से बाहर निकली। फोटोग्राफर ने पुलिया पर से उठकर टोपी उतारी। मुसाफिरों ने मुस्कुराकर हाथ हिलाए। कार ढलवान से नीचे रवाना हो गई। वो वॉलरस जैसी मूछों वाला फोटोग्राफर अब बहुत बूढ़ा हो चुका है और उसी तरह उस गेस्ट हाउस के फाटक पर टीन की कुर्सी बिछाए बैठा है और सयाहों की तस्वीरें उतारता रहता है जो अब नई हवाई सर्विस शुरू होने की वजह से बड़ी तादाद में इस तरफ आने लगे हैं। लेकिन इस वक्त एयरपोर्ट से जो टूरिस्ट कोच आकर फाटक में दाखिल हुई, उसमें से सिर्फ एक खातून अपना अटैची केस उठाए बरामद हुई और ठिठक कर उन्होंने फोटोग्राफर को देखा, जो कोच को देखते ही फौरन उठ खड़ा हुआ था। मगर किसी जवान और हसीन लड़की के बजाय एक अधेड़ उम्र की बीवी को देखकर मायूसी से दोबारा जाकर अपनी टीम की कुर्सी पर बैठ चुका था। खातून ने दफ्तर में जाकर रजिस्टर में अपना नाम दर्ज किया और ऊपर चली गई। गेस्ट हाउस सुनसान पड़ा था। सयाहों की एक टोली अभी अभी आगे रवाना हुई थी और बैरे कमरे की झाड़ पहुंच कर चुके थे और डाइनिंग हॉल में दरीचे के नीचे सफेद बुराक मेज पर छुरी कांटे जगमगा रहे थे। खातून दरमियानी बेडरूम में से गुजरकर पिछले कमरे में चली गई और अपना सामान रखने के बाद फिर बाहर आकर झील को देखने लगी। चाय के बाद वो खाली सिटिंग रूम में जा बैठी और रात हुई तो जाकर अपने कमरे में सो गई। गलियारे में से कुछ परछाइयों ने अंदर झांका तो वो उठकर दरीचे में गई जहां मजदूर दिन भर काम करने के बाद सीढ़ी दीवार से लगी छोड़ गए थे। गलियारा भी सुनसान पड़ा था। वो फिर पलंग पर आकर लेटी तो चंद मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर कोई न था। सिटिंग रूम भाएं भाएं कर रहा था। वो फिर आकर लेटी रही। कमरा बहुत सर्द था। सुबह को उठकर उन्होंने अपना सामान बांधते हुए सिंगार मेज की दराज खोली तो उसके अंदर पीछे पीले कागज के नीचे से एक लिफाफे का कोना नजर आया जिस पर उनका नाम लिखा था। खातून ने जरा ताज्जुब से लिफाफा बाहर निकाला। एक कॉकरोच कागज की तह में से निकलकर खातून की उंगली पर आ गया। उन्होंने दहलकर उंगली झटकी और लिफाफे में से एक तस्वीर सरक कर नीचे गिर गई जिसमें एक नौजवान और एक लड़की अमर सुंदरी पार्वती की मूर्ति के करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर का कागज पीला पड़ चुका था। खातून चंद लम्हों तक गुमसुम उस तस्वीर को देखती रही, फिर उसे अपने बैग में रख लिया। बैरे ने बाहर से आवाज दी कि एयरपोर्ट जाने वाली कोच तैयार है। खातून नीचे गई। फोटोग्राफर नए मुसाफिरों की ताक में बाग की सड़क पर टहल रहा था। उसके करीब जाकर खातून ने बेतकल्लुफी से कहा, कमाल है, 15 बरस में कितनी बार सिंगार मेज की सफाई की गई होगी, मगर ये तस्वीर कागज के नीचे इसी तरह पड़ी रही। फिर उनकी आवाज में झल्लाहट आ गई। और यहां का इंतजाम कितना खराब हो गया है, कमरे में कॉकरोच ही कॉकरोच। फोटोग्राफर ने चौंक कर उनको देखा और पहचानने की कोशिश की। फिर खातून की झुर्रियों वाले चेहरे पर नजर डालकर अलम से दूसरी तरफ देखने लगा। खातून कहती रही, उनकी आवाज भी बदल चुकी थी। चेहरे पर कटुता और सख्ती थी और अंदाज में चिड़चिड़ापन और बेजारी, और वो सपाट आवाज में कहे जा रही थी, मैं स्टेज से रिटायर हो चुकी हूं, अब मेरी तस्वीरें कौन खींचेगा भला। मैं अपने वतन वापस जाते हुए रात की रात यहां ठहर गई थी। नई हवाई सर्विस शुरू हो चुकी है, ये जगह रास्ते में पड़ती है। और आपके साथी? फोटोग्राफर ने आहिस्ता से पूछा। कोच ने हॉर्न बजाया। आपने कहा था ना कि कारजारे हयात जिंदगी में घमासान का रन पड़ा है, इसी घमासान में वो कहीं खो गए। कोच ने दोबारा हॉर्न बजाया और उनको खोए हुए भी मुद्दत गुजर गई। अच्छा, खुदा हाफिज। खातून ने बात खत्म की और तेज तेज कदम रखती कोच की तरफ चली गई। वॉलरस जैसी मूछों वाला फोटोग्राफर फाटक के नजदीक जाकर अपनी टीन की कुर्सी पर बैठ गया। जिंदगी इंसानों को खा गई, सिर्फ कॉकरोच बाकी रहेंगे। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।